नमस्कार भारत, आज है 1 मार्च दिन गुरुवार। सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। बिहार में सियासी टूट फूट, मांझी समेत 5 नेताओं ने बदला पाला।
अभी जो चुनाव होना है राज्यसभा के या विधानसभा के, ये तो उसकी तैयारी है ही, एक जोर तोड़ की। इससे बड़ी तैयारी 2019 के चुनाव को लेकर है।
हिचकोलों के बाद संभली भारत की GDP, बढ़कर हुई 7.2।
अभी हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी निवेशन या धीमेपन की ओर नहीं गई है, लेकिन तेजी की ओर गई है। अभी ये कहने के लिए हमें 3 महीने का और वेट करना पड़ेगा।
और नाइजीरिया में स्कूली लड़कियों को अगवा क्यों करता है बोको हराम।
बोको हराम का मतलब होता है नो टू वेस्टर्न एजुकेशन। तो पूरे समुदाय को ये दिखाने के लिए, मुस्लिम समुदाय को और लोगों को भी, कि आप लड़कियों को पढ़ाओगे तो हम उन्हें उठा लेंगे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, पवन सिंह अतुल से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सीरिया के पूर्वी गोटा में तबाही जारी है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने सीरिया और उसके 2 सहयोगियों ईरान और रूस पर युद्ध विराम की विफलता का दोष मढ़ा है, लेकिन रूसी दूत ने कहा है कि इसके लिए अमरीका समर्थित विद्रोही जिम्मेदार हैं। UN के आपातकाल सहायता संयोजक मार्क लकॉक्ट का कहना है कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो रहा है।
Airstrikes, barrel bombs and artillery shelling were reported across eastern Ghouta. In Shafania, 14 people, including 3...
गोटा में हवाई हमले, बैरल बम और तोपखाने से बमबारी की खबरें आ रही हैं। इनमें 3 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 14 लोग मारे गए हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवरों समेत 18 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। ऐसे में राहत पहुंचाना नामुमकिन है, UN के आपातकाल राहत संयोजक मार्क लॉकॉक के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कम्युनिकेशन निदेशक हॉप हिक्स ने कहा है कि वो अपना पद छोड़ रही हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि उनके पास राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं। व्हाइट हाउस ने इन खबरों का खंडन किया है कि हिक्स के इस्तीफे के पीछे उनका कांग्रेस की कमेटी के सामने दिया गया बयान है। हॉप हिक्स ने मंगलवार को कांग्रेस की कमेटी को बताया था कि उन्होंने ट्रंप के लिए कई बार सफ़ेद झूठ बोले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूस पर पाबंदी हटाने को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा के प्रमुख ने जल्दबाजी करार दिया है। बुधवार को ओलंपिक समिति ने रूस के निष्कासन को खत्म कर दिया था। ये प्रतिबंध पिछले साल दिसंबर में लगाया गया था। अब वाडा के अध्यक्ष सर क्रैग रीडी ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। रूस ने अब भी 2 शर्तें पूरी नहीं की हैं। पहली ये कि उन्होंने अपने खेलों में संस्थागत धांधली की बात नहीं मानी है, और दूसरी ये कि उन्होंने हमें मॉस्को की लैब में जाने नहीं दिया है। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा इंतजार कारगर साबित होता, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रमुख सर क्रेग रीड के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के सबसे प्रमुख बंदूक विक्रेता ने ऐलान किया है कि अब वो एसॉल्ट राइफल बेचना बंद कर देंगे। ऐसी ही राइफल का इस्तेमाल 2 सप्ताह पहले फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुआ था जिसमें 17 जाने गई थीं। डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स नाम की कंपनी की ये घोषणा उस दिन आई है जब हमले का शिकार स्कूल एक बार फिर खुला। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने बंदूक रखने के कानून में फेरबदल की हिमायत करते हुए कहा,
The right answer is not ban specific weapons, it's ban specific people from having any weapon. Let's remember the facts.
सही कदम तो ये होगा कि खास हथियारों पर पाबंदी ना हो, पाबंदी खास लोगों पर हो जिन्हें ये हथियार ना दिए जाएं। ज़रूरत है ऐसे लोगों को ट्रैक करने और उन पर फोकस करने की। इनमें अधिकतर लोगों के बारे में सबूत होते हैं, फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट के शब्द। अफगानिस्तान में अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने एक जर्मन नागरिक को पकड़ा है जो बीते 8 सालों से तालिबान के लिए बम बना रहा था। अगर इसकी पुष्टि होती है तो ये किसी यूरोपीय व्यक्ति के तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की दुर्लभ मिसाल होगी। सीरिया और इराक में तो इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि इस व्यक्ति को तालिबान के बम बनाने के ठिकाने पर रेड के दौरान पकड़ा गया है। सऊदी अरब की एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता को 6 साल के लिए जेल भेज दिया है। BBC समाचार।
ये ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार की खबर से, जहां कल 5 नेताओं ने पाला बदल लिया। कभी जनता दल यूनाइटेड में रहे और अब अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और राजद कांग्रेस गठबंधन में चले गए। शाम तक उनकी तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ी सी माला साझा करते हुए तस्वीरें आईं। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत 4 विधान पार्षदों ने कांग्रेस छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। याद रहे कि बिहार में इसी महीने 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
होली कल है, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही बुधवार को बिहार में सियासी रंग बदलने लगे। कल सुबह जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद कांग्रेस महागठबंधन का दामन थामने की घोषणा की, तो वहीं देर शाम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी समेत कांग्रेस के 4 विधान पार्षदों ने पार्टी को अलविदा कह जदयू का दामन थामने का ऐलान किया। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये दोनों ही फैसले चौंकाने वाले नहीं हैं। ये दोनों नेता बीते जुलाई में नीतीश कुमार द्वारा एनडीए का दामन थामने के बाद से अपने अपने पुराने गठबंधनों में असहज थे। जीतन राम मांझी ने कल देर शाम बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया,
तो 2-3 मुद्दा ऐसा है जो कि गरीब को एकदम हिट किया है, जिसके चलते गरीब परेशान है। सबसे पहले नशाबंदी का मामला लेकर के आप लोगों को कहना चाहते हैं, हमें तो पता है कि 80-90 हजार जो जेल में लोग हैं, उसमें करीब करीब 99% सब गरीब तबके के लोग जेल में हैं, उनके बाल बच्चे लोग एकदम बिलबिला रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने बालू संकट और आरक्षण के सवाल पर भी एनडीए को घेरा। इस मौके पर मौजूद तेजस्वी ने कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है और सम्मान नहीं मिलने के कारण भारत के अनेक राज्यों में भाजपा के सहयोगी दल उससे नाराज हैं। वहीं कांग्रेस छोड़ने वाले अशोक चौधरी का कहना रहा कि सम्मान नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी।
और मैं कोई पहला अध्यक्ष नहीं हूँ, इसके पहले अनिल शर्मा जी थे जिनको यूज एंड थ्रो किया गया, उसके बाद यहाँ पर महबूब अली कैसर साहब थे, राम रतन सिन्हा थे। क्या कारण हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता है उसको अध्यक्ष बनने के बाद अपमानित किया जाता। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सिकरी सिंह के बाद नीतीश कुमार इज द फाइनेस्ट चीफ मिनिस्टर विच बिहार हैज गॉट। नीतीश जी पर इतने लंबे समय तक भारत सरकार में मंत्री रहे, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं है।
अशोक ने खासकर बिहार के कांग्रेस प्रभारी सीपी जोशी को अपने फैसले के लिए जिम्मेदार बताया। दूसरी ओर पार्टी छोड़ते हुए भी उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की। ऐसे विरोध और असंतोष किसी खास परिस्थिति में सामने आते हैं। इस महीने होने वाले उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव को ऐसी ही तात्कालिक स्थिति माना जा रहा है। कल के घटनाक्रम को वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सियासी समीकरण साधने की तैयारी के रूप में देखते हैं।
अभी जो चुनाव होना है राज्यसभा के या विधानसभा के, ये तो उसकी तैयारी है ही, एक जोड़ तोड़ की। इससे बड़ी तैयारी 2019 के चुनाव को लेकर है, और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है 2020 में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बड़े चुनावों को देखते हुए अपने राजनीतिक या सामाजिक समीकरणों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है।
मांझी हाल के वर्षों में दलितों के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें अपने साथ नहीं रख पाने का जहां भाजपा को अफसोस हो रहा होगा, तो वहीं उनका महागठबंधन में शामिल होना इसे मजबूत करेगा। वहीं अशोक चौधरी की अपनी कोई ऐसी खास पहचान नहीं मानी जाती। जानकारों का कहना है कि उनको साथ लाकर एनडीए यह तसल्ली कर सकती है कि उसने महागठबंधन के एक बड़े धड़े को अपने में मिला लिया है। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
हिचकोले खाने के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर बीती तिमाही में बढ़कर 7.2% हो गई है। आर्थिक मोर्चे पर कई सवालों का सामना कर रही भारत सरकार क्या अब आश्वस्त हो सकती है? यही सवाल पूछा हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आलोक पुराणिक से।
7.2% पे जो बढ़ोतरी है, ये एक पॉजिटिव फिगर है, और आशंकाएं जो थी अर्थव्यवस्था को लेके कि एक मंदी का या एक नेगेटिविटी का माहौल बन रहा है, सेटिन हो रहा है, वैसी आशंकाएं अभी सच साबित नहीं हो रही है। लेकिन लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते कि पूरे साल के लिए होल्ड करेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च यानी इन तीन महीनों का डेटा आने के बाद हमारे पास 2017 और 18 का कंप्लीट फिगर सामने आएगा, तब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इकोनॉमी एक तेजी की रफ्तार में है। अभी हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी निगेशन या धीमेपन की ओर नहीं गई है, लेकिन तेजी की ओर गई है। अभी ये कहने के लिए हमें तीन महीने का और वेट करना पड़ेगा।
कई बड़ी जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की और जो बाजार हैं उनमें उतनी पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दी थी, ऐसे समय में ये जो आंकड़ा 7.2 का आया है, इसको क्या सरकार के लिए सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है?
अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो बूम कर रही है, 2000 तेज चल रही है। चाइना की अर्थव्यवस्था का जो साइज है, उस साइज पे भी जो वो लेके आ रहे हैं 7% के आसपास की ग्रोथ रेट, वो मतलब वो भी चमत्कार है, वो भी कोई बहुत मंदी की सिचुएशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत चिंता की बात भारत के लिए। भारत के लिए चिंता की बात तीन है जो इन अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से या इससे पहले के इकोनॉमिक सर्वे से या इसके बाद के डेटा में भी हमको दिखाई पड़ सकते हैं। एक बात तो ये कि जब ग्लोबल अमेरिका को छोड़ के बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, हम बाहर उतनी मजबूती से नहीं बेच पाएंगे। नंबर दो, अगर आप इसी डेटा में देखें एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ता हमको। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतनी सारी ग्रोथ 7% है, 8% है, 6% है, लेकिन रोजगार के मोर्चे पे जो तेजी दिखाई पड़नी चाहिए थी वो हमको दिखाई नहीं पड़ती। बल्कि होता है दरअसल यूं है कि कई बड़े बैंक अपने छटनी कर रहे हैं, नए रोजगार उस तरह से आ नहीं रहे हैं।
आलोक पुराणिक को सुन रहे थे आप। अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की, जहां चरमपंथियों के जनाजों को अब सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। घाटी में गुप्त पुलिस ने चरमपंथियों के जनाजों में लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है और कहा है कि इन जनाजों से कश्मीरी नौजवानों में बदले की भावना भड़कती है और वो चरमपंथ की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जनाजों पर प्रतिबंध की खबरों से आम लोगों में गुस्सा है। कुछ वर्गों का मानना है कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पुलिस की खुफिया विंग ने सरकार से कहा है कि जनाजू के ऐसे जुलूस चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इस बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय तो नहीं लिया है, परंतु कश्मीरियों में नाराजगी पाई जाती है।
रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इंटरफेरेंस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात की जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों के दिल जीतने के बजाय ऐसे कदम ले रही है जिस वजह से लोगों को नफरत हो रही है दिन ब दिन गवर्नमेंट की, बजाय वो क्लोज आने के गवर्नमेंट से बहुत लाइक दूर चले जा रहे हैं। अभी
पहले ये फ्रस्ट्रेशन मैं कहूँगा इसको कि ज़्यादा लोग क्यों आ गए। जब कोई लड़का शहीद होता है वो हमारे ही लोग हैं, मेरा भाई खुद मिलिटेंट है, कल को वो शहीद हो जाएगा, क्या उसके जनाजे में लाख लोग नहीं आ जाएंगे?
जब भी कोई फ्यूनरल होता है उस टाइम पे इनको जो रियलिटी है, जो एक्चुअल हकीकत है, जो ग्राउंड लेवल पोजीशन है कश्मीर में इंडिया से रिलेटेड, वो इनको सामने आ जाती है।
कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना मानव अधिकारियों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप भी है। मानव अधिकारों के लिए सक्रिय कई ग्रुपों के संगठन कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के प्रवक्ता खुरम परवेज कहते हैं कि ऐसा निर्णय लिया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और खुद भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा, क्योंकि मृतक के शव पर मातम करना मूल मानव अधिकारों में शामिल है।
अगर आप देखें जब बुरहान वानी मारे गए 2016 में, तब से लेकर आज तक कंसिस्टेंटली हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने फ्यूनरल प्रोसेशंस को क्रिमिनलाइज किया। उस रात भी जब बुरहान वानी जब मारे गए, उसके 24 घंटे के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में, उन सब लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में 30 के आसपास लोग जो है 24 घंटे के अंदर मारे गए। लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे अब लोग रुकेंगे, मुझे लगता है कि वो शायद खुशफहमी है।
खुरम कहते हैं कि भारत ने मकबूल भट्ट और अब्दुल गुरु की लाशें अभी तक तिहाड़ जेल में रखी हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं अगर जनाजों को भी रोका गया। पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एक प्रस्ताव है। लेकिन प्रस्ताव के पीछे तर्क ये है कि चरमपंथियों की लाश को भारत विरोधी गतिविधियों का प्रतीक बनाकर लाखों लोग नारेबाजी करते हैं और इस भावुक वातावरण में चंद युवा बंदूक उठाने की ठान लेते हैं, जिससे हिंसा का वृत्त बढ़ जाता है। इनका कहना है कि इसी सब को रोकने के लिए ये प्रस्ताव दिया गया। पुलिस का मानना है कि पिछले 2 वर्ष के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि किसी चरमपंथी कमांडर के जनाजे में ही कई युवाओं ने ठान ली कि इन्हें हिंसा का रास्ता अपनाना है। गौरतलब है 2016 में 9 जुलाई को जब जाने माने चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी दो साथियों समेत मुठभेड़ में मारे गए तो घाटी भर से लाखों लोग इनके मूल गांव त्राल की तरफ चल पड़े, परंतु इन्हें जगह जगह रोका गया। भीड़ ने जब विरोध किया तो लोगों पर गोलियां चलाई गईं और फायरिंग में पहले ही दिन दर्जनों लोग मारे गए। इसी कार्रवाई के संदर्भ में एक लंबा आंदोलन चला जिसके बीच 100 से ज्यादा युवा मारे गए और 15,000 घायल हो गए। घायलों में अधिकतम छर्रों के शिकार हुए। छर्रों के कारण सैकड़ों लड़कों और लड़कियों की आंखें प्रभावित हुई और दर्जनों ऐसे हैं जो आंखों की रोशनी खो बैठे हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। पवन सिंह अतुल मेरे साथ स्टूडियो में हैं। पवन, बताएं क्या खास है आज के अखबारों में?
कुलदीप, आज सारे अखबारों में श्रीदेवी के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबरें भरी पड़ी हैं। सभी अखबारों में उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें लगाई हैं जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और कई अन्य हस्तियां भी शामिल हुई। अमर उजाला ने हेडलाइन दी है, हर आंख नम, हर कोई गमजदा। लेकिन मेरा ध्यान दैनिक जागरण में छपी एक खबर की ओर जा रहा है। खबर के मुताबिक श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत भेजने में अशरफ नाम के एक भारतीय की अहम भूमिका रही है। अखबार लिखता है कि दुबई में सरकारी कागज़ पर अशरफ के नाम वाला अशरफ शेरी थमसेरी केरल का रहने वाला है। अशरफ कर्जे में डूबे मजदूरों से लेकर अमीरों तक के शवों को वापस भारत भेजने में मदद करता है। वो कहते हैं कि उनको इससे सुकून मिलता है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से पहले सफ़े पर खबर छापी है कि जो रफाल विमान सौदा है उसकी जो कीमत है विमान की वो 2007 की तुलना से कम है। विपक्ष अब तक कहता आया है कि ये महंगा पड़ रहा है, लेकिन अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कम है। वो उनका कहना है कि अखबार जो 2007 में जो कीमत थी उस समय जो यूरो की कीमत थी उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो ये
एक खबर दैनिक जागरण का मैं जिक्र कर दूं पहले पन्ने पर ही है कि एसिड अटैक के दोषी को 18 साल की कैद की है। गुरदासपुर की ये खबर है। एसिड अटैक का ये मामला था, 6 छात्राओं पर एसिड से हमला किया गया था और इसमें अब कोर्ट का फैसला है 18 साल कैद।
जी, अमर उजाला में डार्विन की थ्योरी को गलत बताने वाले मंत्री सत्यपाल सिंह ने एक बार फिर कहा है कि दुनिया डार्विन नहीं बल्कि आर्यभट्ट की जीरो और रामानुजम की नंबर थ्योरी को सलाम करती है। अखबार के मुताबिक सत्यपाल सिंह ने एक समारोह में कहा कि मैं साइंस का छात्र हूं इसलिए आज भी अपनी बात पर कायम हूं। तो ये बहुत ही दिलचस्प है, उन्होंने पहले कहा था और अब एक बार फिर उस बात को दोहरा रहे हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया पवन सिंह अतुल अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब हमारी खास सीरीज़ हर चॉइस की आज की कड़ी। इस सीरीज़ में हम सुना रहे हैं भारत की उन महिलाओं की कहानियाँ जिन्होंने दुनिया के कहे मुताबिक या दूसरों की शर्तों पर जीने से इनकार कर दिया। ये भारत की महिलाओं की असली कहानियाँ हैं। आज एक नपुंसक व्यक्ति से ब्याही गई एक महिला की कहानी सुनिए रूपा झा की आवाज़ में।
मेरी शादी की पहली रात थी। सिर झुकाए हाथ में दूध का गिलास लिए मैं बेडरूम में घुसी, लेकिन मेरे पति तो कब के सो चुके थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। शादी से पहले भी वो काफी असहज लगे, मुझे लगा शर्मीले होंगे। अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो बोले तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर दूसरी, तीसरी और आगे की कई रातें यही चलता रहा। लेकिन मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करना ही नहीं था। वो बमुश्किल ही मुझसे बात करते, छूना तो दूर की बात, वो मुझसे दूर भागते थे। क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में शादी की है? किससे शेयर करती ये बात? परिवार से कह नहीं सकती थी, लेकिन मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति नपुंसक हैं। डॉक्टर ने उन्हें शादी से पहले ही बता दिया था। उनके घर में सबको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। सबसे ज्यादा ठेस मुझे अपने पति की बात से लगी। वे बोले, किसी के साथ सोना चाहो तो सो जाओ, मैं बच्चे को नाम भी दे दूंगा, लेकिन मेरे नपुंसक होने की बात किसी से न कहना। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो पति को छोड़ूं या अपने सम्मान को। मैंने पति को छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोस्तों ने मदद की। एक लेडीज हॉस्टल में चली गई, फिर एक नौकरी मिली। धीरे धीरे ही सही जिंदगी पटरी पर आने लगी। मैंने तलाक की अर्जी डाल दी। 3 साल लगे लेकिन छुटकारा मिल गया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ हो। आज मैं 40 की हूँ, अब भी कुवारी हूँ। मैं अपने सपने और अपनी जिंदगी सिर्फ उसके साथ बांटूंगी जो मुझसे प्यार करे। वो आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक।
हमारी खास सीरीज हर चॉइस सुन रहे थे आप। नाइजीरिया में सक्रिय चरमपंथी संगठन बोको हराम एक बार फिर चर्चा में है। नाइजीरिया के दोबे प्रांत में एक स्कूल पर हुए हमले के बाद 110 छात्राएं लापता हो गई हैं। माना जा रहा है कि इन छात्राओं का अपहरण उसी बोको हराम संगठन ने किया है जिसने 4 साल पहले एक स्कूल पर हमला करके इसी तरह 250 से ज़्यादा छात्राओं को अगवा किया था। आखिर ये संगठन स्कूली छात्राओं को क्यों निशाने पर लेता है और अपहरण के बाद उनका क्या करता है? दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ की पड़ताल।
दुनिया जहां ये आवाज है नाइजीरिया की उन अभागी माओं की जिनकी बच्चियों का बोको हराम नाम के चरमपंथी संगठन ने 4 साल पहले अपहरण कर लिया था। ये कह रही हैं, हमारी बच्चियों को वापस लाओ। साल 2014 के अप्रैल महीने में बोको हराम के चरमपंथियों ने चिबोक कस्बे के एक स्कूल पर हमला किया, 276 लड़कियों को ट्रकों पर डाला और गायब हो गए। कुछ लड़कियां भाग निकली, कुछ को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने समझौता करके छुड़ाया, मगर अभी भी 100 से ज्यादा लड़कियां लापता हैं। इस घटना के 4 साल बाद एक बार फिर 110 लड़कियों का स्कूल से अपहरण कर लिया गया है और माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे भी बोको हराम का हाथ है। बोको हराम ने अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में बम धमाकों, हत्याओं और अपहरणों से कोहराम मचाया हुआ है। ये संगठन सरकार को उखाड़कर इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहता है। जेएनयू के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे बताते हैं, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है।
लड़कियों को सैकड़ों के रूप में वो अपहरित करते हैं और वो स्कूल से अपहरण करते हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि बोको हराम का मतलब होता है नो टू वेस्टर्न एजुकेशन, और ये लड़कियां जब पढ़ती हैं वो मॉडर्न तालीम पाना चाहती हैं, तो पूरे समुदाय को ये दिखाने के लिए, मुस्लिम समुदाय को और लोगों को भी, कि आप लड़कियों को पढ़ाओगे तो हम उन्हें उठा लेंगे और हम उनको पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है, और इसलिए लड़कियों पे बार बार उनका अटैक होता है और बहुत सारे लड़कियों को उठा लेते हैं।
ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि बोको हराम अपने कब्जे में आए ग्रामीणों से मजदूरी करवाता है, लड़कों को हथियारबंद लड़ाके बनाता है और लड़कियों को अपने लड़ाकों की पत्नी। लेकिन बोको हराम के निशाने पर स्कूली लड़कियां ही क्यों होती हैं और उन्हें किडनैप करने के बाद वो करता क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर सुरेश कुमार कहते हैं कि इसके 3 कारण हैं।
नंबर 1, आर्म्स का जो सप्लाई है, वेपन्स का, आर्म्स का जो सप्लाई है दूसरे देशों में और पूरा एक जो टेररिस्ट रूट है उस पे, एक तो इन लड़कियों को वहां पे यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बोको हराम का जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जो कारोबार है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। नंबर 3, जो क्योंकि माइनर गर्ल्स हैं, इनको कोशिश किया जाता है कि इनको अपना थ्रू रिलीजियस इनको जो है वो पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ किया जाए ताकि ये इस संगठन के लिए काम कर सके।
दो हजार 2014 वाली घटना के बाद अब फिर बोको हराम का इतने बड़े स्तर पर हमला करना दिखाता है कि कहीं न कहीं नाइजीरिया की सरकार खुद को इस संगठन के आगे बेबस पा रही है। बोको हराम आखिर कितना ताकतवर है जो ये स्कूलों से छात्राओं को उठा लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता? प्रोफेसर सुरेश कुमार बताते हैं,
जो नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया है उसमें ये 6 इलाके हैं, न्योमाटी के, होसारी, किरोनोवा, वोल्को, गुम्बारू और सांबिसा। ये जो 6 इलाके ये पूरे बोको हराम के नियंत्रण में है। यहाँ पे नाइजीरियन सरकार का कोई जो है वो दखलंदाजी नहीं है। शासन, लोकल गवर्नमेंट का प्रशासन, ये सारा बोको हराम चलाता है वहाँ पे। इसलिए जब क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है तो इन्हीं का ही जो है वो इस्लामिक फाउंडेशन है वही काम कर रही है इन सभी राज्यों में। अभी ये जो गर्ल्स का जो किडनैपिंग होता है उसमें जो है वो जो गांव का जो गरीब आदमी है वो इनके खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको अपनी जान की सुरक्षा चाहिए।
एक तरफ जहां गरीब लोग बेबस हैं, वहीं इस संगठन को समर्थन भी लोगों से ही मिलता है। जेएनयू के प्रोफेसर दुबे इसके लिए वहां की गरीबी को जिम्मेदार बताते हैं।
नाइजीरिया प्राकृतिक संपदा से बहुत ही संपूर्ण देश है। बहुत सारे प्राकृतिक संपदा होने के बाद भी वहाँ पे बहुत बड़ा समुदाय के पास जीवन के साधन नहीं है और गरीबी रेखा के नीचे है। और शुरू से नाइजीरिया धर्म के नाम पे, ट्राइब के नाम पे काफी डिवाइडेड देश रहा है, तो वहाँ पे गरीबी इस डिविजन को और ही आगे बढ़ा देती है।
नाइजीरिया की सरकार ने सैन्य कार्रवाई से बोको हराम को कुछ हद तक कमजोर तो किया है, लेकिन उसे खास सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? प्रोफेसर दुबे बताते हैं,
जो अभी वहाँ प्रेसिडेंट बुखारी हैं, वो बिल्कुल उसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है। पॉलिटिकल पार्टी कंडेम करती हैं, इस्लामिक पार्टियां भी कंडेम करती हैं, लेकिन वो एक ऐसी संस्था बन गई है जिसको उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिकन्स ने वहाँ पे अपने आर्मी भेजा था और अफ्रीकन यूनियन ने भी भेजा था, लेकिन वो बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं इसलिए नहीं हुए कि लोकल लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, और अज्ञानता के कारण, अनपढ़ होने के कारण उनका अभी तक वर्चस्व बोको हराम का बना हुआ है।
ऐसे में बोको हराम की वजह से नाइजीरिया में जो संकट पैदा हुआ है उसे दूर कैसे किया जा सकता है? प्रोफेसर सुरेश कुमार,
सरकार के जो दावे वो ये है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक के थ्रू इसके नियंत्रण को कम किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी वहाँ की राजनीतिक आर्थिक जो शक्ति है वो बोको हराम के नियंत्रण में है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर बिलियंस डॉलर का पेट्रोल इलीगल तरीके से कारोबार चलेगा, चाहे वो पश्चिमी देशों के हो चाहे दूसरे देशों के हो, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से बोको हराम के खिलाफ जो है वो सफलता नहीं मिल पा रही।
साफ है कि नाइजीरिया में बोको हराम जैसे चरमपंथी संगठन को एक तरफ जहां गरीबी और अशिक्षा से ताकत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल और हथियारों के अवैध कारोबार से ये और मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे लेकर गंभीर रुख अपनाना होगा।
आज का दुनिया जहान आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं टेनिस से। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडर लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के इतिहास में सर्वाधिक पुरस्कार हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चोट के बाद वापसी करते हुए अपनी उपलब्धियों की बदौलत कमबैक ऑफ द ईयर का खिताब उनको मिला है। सेरेना विलियम्स ने अपने 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन के दम पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी सिद्धांत थिंगालिया आज से बर्मिंघम में शुरू हो रही विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। थिंगालिया का 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ और 110 मीटर इंडोर बाधा दौड़ दोनों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और ओलंपिक 2020 के लिए नीली धारियों, हिरण जैसी आंखों और नुकीले कान वाला सुपर हीरो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर होगा, जिसे जापान के स्कूली बच्चों ने चुना है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते एक बार फिर सुनिए मुख्य समाचार पवन सिंह अतुल से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी सीरिया के पूर्वी गुटा में तबाही जारी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने सीरिया और उसके दो सहयोगियों ईरान और रूस पर युद्ध विराम की विफलता का दोष मढ़ा है, लेकिन रूसी दूत ने कहा है कि इसके लिए अमरीका समर्थित विद्रोही जिम्मेदार हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कम्युनिकेशन निदेशक होप हिक्स ने कहा है कि वो अपना पद छोड़ने जा रही हैं। गौरतलब है कि होप हिक्स ने मंगलवार को कांग्रेस कमेटी को बताया था कि उन्होंने ट्रंप के लिए कई बार सफ़ेद झूठ बोले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस पर से पाबंदी हटा दी है, लेकिन वाडा ने इसका विरोध किया है। बुधवार को निष्कासन खत्म कर दिया गया था, लेकिन वाडा के प्रमुख ने कहा है कि ये कदम जल्दबाजी में उठाया गया है। अमेरिका के सबसे प्रमुख बंदूक विक्रेता ने ऐलान किया है कि अब वो असॉल्ट राइफल बेचना बंद कर देंगे। ऐसे ही राइफल्स का इस्तेमाल कर दो सप्ताह पहले फ्लोरिडा के एक स्कूल में हमला हुआ था, जिसमें 17 जाने गई थीं। अफगानिस्तान में अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें एक जर्मन नागरिक को पकड़ा है जो 8 सालों से तालिबान के लिए बम बना रहा था। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिजीत श्रीवास्तव ने। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।